يا أيها الذين آمنوا، أي لوگو جو ایمان لائے ہو، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، بے شک بہت سے احبار، احبار حبر کی جمع، ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو. حبر اصل میں کہتے ہیں خوبصورت اور منقش کپڑے کو، ایمبرائڈری والے کپڑے کو، جو سادے کپڑے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. ایک کپڑا خواہ کتنا ہی قیمتی ہو، اس کے مقابلے میں وہ کپڑا جو کم قیمت کا بھی ہو لیکن اس کے اوپر کچھ کڑھائی وغیرہ ہوئی ہوئی ہو تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ثوب محبر، نقش و نگار والا کپڑا، خوبصورت کپڑا. تو علماء یہود کو احبار کہا گیا کیونکہ یہ بات کو بہت سلیقے سے کرنا جانتے تھے. آج کل کبھی آپ نے کوئی ایسا چینل دیکھا ہے یا سنا ہے جس میں کرسچن پریسٹ اور جیوز جو ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہوں؟ کبھی موقع ملا آپ کو؟ بولنے کا جو سٹائل اور انداز ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک باطل دین جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس میں کوئی سچائی نہ ہو، اگر اس کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا جائے تو وہ بھی لوگوں کے دل بدل دیتا ہے. کہاں یہ کہ ایک سچا دین، لیکن افسوس کہ اس دین کے ماننے والوں نے اس دین کو ہی چھوڑ دیا، اس کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین خوبصورت مثال ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے اکثر مقربین حضرات اور جو مبلغین حضرات ہیں ان کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ کا سٹائل کیا تھا، خطبہ کا سٹائل کیا تھا، تعلیم کا انداز کیا تھا، عام گفتگو کیسی تھی. اور آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ لوگ آپ کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ آپ کو ساحر کہا جانے لگا کہ یہ تو جادو کر دیتے، ان سے بات نہ کرنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو خوبصورت انداز سے پیش کریں، دین کا غلبہ اور دین کی صورت عوام میں نظر آتی ہے نا جو اس کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس کے لیے کوئی محنت کی، کوئی کوشش کی، کوئی شوق بھی آیا کبھی؟ شیشے کے سامنے بول کر دیکھیے. احبار حبر کی جمع ہے، ایسا شخص جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو، خوبصورت اور منقش کپڑے کو ثوب محبر کہا جاتا ہے. مراد علماء یہود ہیں جو دین کو بہترین طریقے سے پیش کرتے تھے. اور رہبان راہب سے ہے، علماء نصارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا صوفیاء نصارہ کے لیے. ان کے ہاں علماء کے لیے قصیصین کا لفظ ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. فرمایا ان کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. باطل طریقے کون سے تھے؟ مثلا ان کے باطل طریقوں میں نمبر ایک یہ کہ حرام چیزوں کو حلال کرنا تھا. مثلا انہوں نے سود حلال کر لیا تھا اپنے لیے. پھر اسی طرح رشوتیں لے کر غلط فتوے دیتے تھے. پھر نجات نامے فروخت کرتے تھے. نجات نامہ کیا ہوتا ہے؟ معافی نامہ. حرام کردہ چیزوں مثلا چربی کو پگھلا کر ان کی قیمت کھا لیتے تھے. چربی حرام تھی نا ان پر، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا لیکوڈ بنا کے اس کو بیچ لیتے تھے کہ سالڈ حرام ہے لیکن لیکوڈ حلال کر لیا. ہیلا سازی کرتے تھے. شادی یا غمی کی کوئی رسم ہو اس میں اپنا حصہ اور نذرانے وصول کرتے تھے. اور یہی چیز دراصل ان کے دین میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی انہی کارگزاریوں پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا तुम औरों को तो जीरे और सौंफ पर भी उशर का हिसाब बताते हो, लेकिन खुद दूसरों का माल हड़प कर जाते हो। दूसरे का माल लेने का हक कब है इंसान को? जब वो वाकई किसी दूसरे की कोई हकीकी खिदमत करे या उसको नफा पहुंचाए, लेकिन इसके बगैर किसी को धोखे में मुब्तला करके, किसी को एक्सप्लॉइट करके उसका माल लेना, ये सरासर नाजायज है। यहूद और नसारा दोनों के उलमा बड़े पैमाने पर अपने अवाम का मजहबी इस्तेमाल करते, एक्सप्लॉइटेशन करते। अवाम में ऐसी झूठी कहानियां फैलाए हुए थे कि जिसके नतीजे में लोग अपने बुजुर्गों से गलत तवक्कुआत वाबस्ता करें, फिर उनसे बरकत लेने आए और उन्हें हदीये और नजराने पेश करें। वो खुदा की खिदमत के नाम पर लोगों से रकमें वसूल करते थे, हालांकि जो दीन वो लोगों में तकसीम कर रहे थे वो उनका खुद साख्ता था। फिर इसी तरह तावीज गंदों में पुरअसरार असरात बता के उन्हें लोगों के हाथ फरोख करते, हालांकि खुद अपने लिए वो चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे। और ये सिर्फ उस जमाने में नहीं था, आज के दौर में भी हम देखते हैं कि उनके यहाँ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर फरमाया कसीर मिन अलहबार, यानी कलील, कोई कोई नहीं, कसीर, बहुत से अहबार और रहबान ऐसे हैं कि जो लोगों को धोखे में डालकर उनके माल खाते हैं और इस तरह वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक देते हैं, यानी हकीकी दीन की तरफ जाने ही नहीं देते, अपने ही बिछाए हुए जाल में लोगों को उलझाते रहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ये इसी टॉपिक के बारे में मैं मैडम से बता रही थी कि जब अमेरिका में टेलीविजन चैनल्स पे जो इनकी ब्रॉडकास्टिंग होती है और मिशनरीज, ये जो प्रीचर्स, जो इनके उलमा हैं, जिस तरह से ये लेक्चर्स देते हैं, तो अक्सर उस पे हॉटलाइन का ना नंबर भी आता है, फ्लैश करता है स्क्रीन पे, और जब वो अपना प्रीच कर रहे होते हैं तो डोनेशंस के लिए नंबर फ्लैश हो रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली, और बहुत ये बड़ा बिजनेस है वहाँ पे, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सारे वेस्ट में। और अगर किसी को देखने का इत्तेफाक हो तो इट्स लाइक अ शो, जब आप देखते हैं ना ये आलिम जो प्रीच कर रहे होते हैं और बिल्कुल स्टेज सेट होता है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में इनके लेक्चर्स होते हैं, इधर से उधर दे डांसिंग अराउंड द प्लेस, और बहुत ज्यादा लोगों को अपनी तरफ माइल करने के नए नए टैक्टिक्स इन्होंने इख्तियार किए हैं। और इसी में ये कि हर दफा ये लोग जब पैसों के डोनेशंस मांग रहे होते हैं तो बहुत कम ही ये लोग क्रिश्चियनिटी के नाम पे मांगते हैं ना, और उसका रीजन ये है कि जाहिर सी बात है कि जो दूसरे दीन के लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी के नाम पे तो पैसे नहीं देंगे, तो करते क्या है कि फिर सेव द चिल्ड्रन फंड या हेल्प द ब्लाइंड, इस तरह के टाइटल्स के नीचे जो है वो एक्चुअली होता ही है कि सब क्रिश्चियन मिशनरीज का ये इंस्टीट्यूट होते हैं, और इस तरह के नामों के अंदर ये डोनेशंस मांगते हैं, और बिलियंस बिलियंस की इंडस्ट्री है क्रिश्चियनिटी जो प्रीच करने वालों की। एंड थोड़ा बहुत उसमें लोग ये है कि काम भी करते हैं, लेकिन एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा और ये सब चीजों के लिए जो टूल्स हैं, तो ये सारा पैसा इनको इसी तरह मिलता है। और ये जो आप लोग ने देखे होंगे टेलीविजन पे सिक्स चिल्ड्रन के एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि आपको सोमालियन चिल्ड्रन की 5 मिनट की वीडियो दिखा रहे हैं, ऑफकोर्स ये लोग इसी तरह अपील करते हैं लोगों को कि कोई इनको रिफ्यूज नहीं करना चाहता, हु डजंट वांट टू हेल्प अ बेबी, मगर हमने इस तरह के तरीके कभी सोचे ही नहीं कि हम अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस्लाम की तबलीग करने में। और लिटरली इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस, पूरी इंडस्ट्री है इनकी। टेलीविजन पर जरा सा कोई भी चैनल इनका बैठ के आधा घंटा देख ले तो पता चल जाता है कि इट्स अ बिग शो, और अब बिल्कुल ये आयत जो है वो फिट होती है इससे। अस्सलाम वालेकुम।
इस पर एक तारीखी वाक्य हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवाज से पता चलता है। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं इस्फहान यानी ईरान के इलाके का एक फारसी नस्ल नौजवान था। जिस बस्ती में हम रिहायश पजीर थे वो जिश के नाम से मशहूर थी, मेरा बाप इस बस्ती का सरदार था। वो तमाम बस्ती वालों में ज्यादा मालदार और रोब और दबदबे का मालिक था। पैदाइश के दिन से मेरे साथ उसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यार था। जो जो मेरी उम्र बढ़ती गई, उसकी मोहब्बत में इजाफा होता गया। मुझे घर की चार दीवारी में इस तरह पाबंद कर दिया गया जैसे लड़कियों को घरों में पाबंद किया जाता है। मैंने मोहब्बत के इस कैद खाने में मजूसियत की तालीम हासिल करना शुरू की। उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की और इस मैदान में एक खास मकाम पैदा किया। बिलाखिर मुझे उस आग का निगरान बना दिया गया जिसकी हम पूजा करते थे। उसे लगातार जलाए रखने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं उसे दिन रात एक लम्हे के लिए भी बुझने न देता। मेरा वालिद बहुत बड़ा जागीरदार था। सालाना वाफिर मकदार में हमारे घर में गल्ला आता। रोजाना उस जागीर की देखभाल मेरे वालिद का मामूल था। एक दिन वो किसी जरूरी काम में मशगूल हुए और मुझे हुक्म दिया, बेटा मैं आज खेतों में नहीं जा सकूंगा, मेरी जगह आप जाए और खेतों की निगरानी करें। मैं घर से तो अपनी जागीर की निगरानी करने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में एक गिरजा के पास से गुजरा जिसमें ईसाई पूजा पाठ में मसरूफ थे। मुझे उनका तर्ज़ इबादत बहुत पसंद आया। मुझे उन दिनों ईसाइयत या दीगर अध्ययन के बारे में कुछ मालूम न था, इसलिए कि मेरे वालिद मुझे घर से किसी वक्त बाहर निकलने ही न देते। उस रोज जब मैंने गिरजे के अंदर से ईसाइयों की इज्तिमाई आवाजें सुनी तो मैं बेख्तियार उसके अंदर चला गया। जब मैंने गौर से उन्हें देखा कि वो सब इबादत में मसरूफ हैं, तो मुझे उनकी इबादत का अंदाज बहुत पसंद आया और मैं उनके दीन की तरफ राग़िब हो गया। मैंने अपने दिल में कहा, खुदा की कसम ये दीन तो उससे कहीं बेहतर है जो हमने इख्तियार कर रखा है। बखुदा मैं गुरूब आफ्ताब तक वहीं रहा और उस दिन खेती बाड़ी की निगरानी के लिए न गया। मैंने अहले कनीसा यानी चर्च वालों से दरियाफ्त किया, इस दिन का मरकज कहाँ है? उन्होंने मुझे बताया शाम में। जब रात हुई तो मैं अपने घर वापस लौट आया। बाप ने मुझसे पूछा, आज दिन भर आपने कौन सा काम किया? मैंने अर्ज की, अब्बा जान आज खेतों की तरफ जाते हुए मेरा कनीसा के पास से गुजर हुआ। मैंने देखा कुछ लोग अंदर इबादत में मसरूफ है। मुझे उनकी इबादत का अंदाज बहुत पसंद आया। शाम तक मैं उन्हीं के पास बैठा रहा। मेरी बातें सुनकर बाप घबरा गया, उसने अपना दिल पकड़ लिया। बेटा इस दिन में कोई खैर भलाई नहीं, तेरे बाप दादा का दीन इससे बेहतर है। मैंने कहा, अब्बा जान हरगिज नहीं, खुदा की कसम इन लोगों का दीन हमारे दीन से बहुत बेहतर है। मेरा बाप मेरी जानिब से ये जवाब सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अंदेशा लाहक हुआ कि कहीं मैं अपने आबाई दीन से मुनहरिफ न हो जाऊं। उसने मुझे घर में कैद कर दिया और मेरे पांव में जंजीर डाल दी। एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने गिरजे में ये पैगाम भेजा, जब कोई मुल्क के शाम को जाने वाला काफिला उनके यहाँ से गुजरे तो मुझे जरूर इत्तला करना। थोड़े ही दिनों के बाद एक काफिला पहुंचा जो शाम जा रहा था। अहले कनीसा ने मुझे इत्तला कर दी। मैंने पूरे जोर से झटका दिया, जंजीर टूटकर दूर जा गिरी और वो चुपके से बाहर निकल आया और काफिले के साथ हो लिया। चंद दिनों बाद हम शाम पहुंच गए। वहां मैंने दरियाफ्त किया, इस मुल्क में सबसे आला मजहबी शख्सियत कौन है? लोगों ने मुझे बताया, चर्च का निगरान आला यानी पोप। मैं उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि मुझे ईसाइयत में दिलचस्पी है, मेरी दिली तमन्ना है मैं आपके पास रहूं, ईसाई मजहब की तालीम हासिल करूं और आपकी रहनुमाई में इबादत करूं। मेरी गुजारिश सुनकर उसने मुझे अपने पास रहने की इजाजत दे दी। मैंने जी भर कर उसकी खिदमत की, लेकिन थोड़े ही अर्से बाद मुझे मालूम होगा कि ये अच्छा आदमी नहीं। ये अपने पैरोकारों को सदका खैरात करने का हुक्म देता है और जब वो अपने मालो मता लेकर इसकी खिदमत में हाजिर होते ताकि इसके जरिए सबका खैरात किया जाए तो सब माल खुद हड़प कर जाता, फुकरा और मसाकीन को उसमें से कुछ न देता। इस तरह उसने 7 मटके सोने और चांदी से भर लिए। जब मैंने उसकी ये हरकतें देखी तो मुझे वो शख्स बहुत बुरा लगा, लेकिन चंद ही दिनों बाद मौत ने उसे आ लिया। ईसाई पैरोकार जब उसे दफन करने लगे तो मैंने उनसे कहा, तुम्हारा मजहबी सरदार कोई अच्छा आदमी नहीं था, ये तुम्हें तो सदका खैरात का हुक्म देता और जब इसके तरगीब दिलाने पर तुम अपना माल उसके पास जमा कराते ताकि ये अपने हाथ से गुरबा और मसाकीन में तकसीम करे तो ये सब माल खुद हड़प कर जाता और उसमें से एक पाई भी किसी मिस्कीन को न देता। उन्होंने मुझसे कहा, आपके पास क्या दलील है? मैंने कहा, तुम्हें उसका खुफिया खजाना बता देता हूँ। उन्होंने कहा, बताइए। मैंने उन्हें वो जगह बताई जहाँ उसने माल दबा रखा था। जब उन्होंने सोने और चांदी के भरे हुए 7 मटके देखे तो विश्व बदंदा रह गए। ये मटके वहां से निकाल लिए और सबने फैसला किया कि इसे दफन न किया जाए बल्कि सूली पर लटका के इसे पत्थर मारे जाए। उसके साथ बिलाखिर यही सलूक किया गया। ये जो वाक्य मैंने पढ़कर सुनाया है ये बहुत अच्छी किताब है हयात सहाबा के दर्शन पर, छोटे छोटे वाक्यात है इससे, तो इसको अगर आप ले लें तो बीच बीच में ऐसे सोते उठते जागते अपने बेड साइड टेबल पर रखते इन सारे वाक्यात को पढ़ने तो तरबियत के लिए बहुत अच्छे है। इसमें बुनियादी चीज जो सुनाने की थी वो हिस्सा था जो उस मजहबी लीडर का था या पादरी का था कि जिसने दुनिया का माल समेट रखा था और लोगों के ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए फिर लोग जो थे क्योंकि इसके फौरन बाद वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, ज़ाहिर जिनका ये अखलाक होगा उनके दीन पर कौन होगा। फिर आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम, तुम भी उन लोगों के तरीकों की पैरवी करोगे। यानी अफसोस ये कि ये किरदार आज मुसलमानों के भी मजहबी तबके में आ गया। वहां भी बाज़ औक़ात ऐसे फतवे मिलते हैं कि जिससे लोगों को माली तौर पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। कुछ दिन पहले किसी ने एक फतवा लाकर दिया, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। ये नहीं बताऊंगी कि किसके पास ये गए और किसने दिया, क्योंकि दोनों चीजें यानी किसी पर्सनालिटी या किसी शख्स को यहाँ ब्लेम करना मकसूद नहीं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बाद अर्ज सलाम, आप जनाब अली की खिदमत में एक मसला है पेश करता हूँ। आप जनाब अली से मौजबाना दरख्वास्त है कि इस सवाल को कुरान हदीस और फिक्र हनफी की रोशनी में जवाब बता फरमाए। सवाल है, एक शख्स है उसने 50 साल की नमाजों को कजा किया, अब अगर उसके वारिस उसका कफारा दे तो शरीयत के अंदर उसकी कितनी मकदार होगी। ये भी फरमाए कि क्या कफारा देने से उनकी बख्शिश हो जाएगी। जवाब है, मसला मस्कूरा में हर नमाज के बदले में फिदिया सबका फितर की मकदार में देना पड़ेगा। फिदिया के बाद उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर के नमाज का गुनाह माफ फरमा कर बख्शिश फरमा देंगे। एक नमाज का फिदिया 25 रुपए है, इस हिसाब से एक दिन की 5 नमाज और वितर मिलाकर 150 रुपए यौमिया बनेंगे। एक साल में दिन 363 हैं, कुल दिन 50 साल के 18,150 हैं, कुल फिदिया 27,22,500 है। 50 नमाज ईद उल फितर की तो उसका फिर कफारा 25 रुपए तो 1,250 ही बनता है, और ईद उल अजहा जो है उसका भी इसी तरह 1,250 बनता है, और 2,1250 को फिर अगर उसमें मिलाया जाए तो 27,25,000 रुपए कुल फिदिया है, ये देना होगा। और अगर किसी के पास वो ना हो तो फिर क्या करना होगा। ये बता रही है कि जो इनके पादरी माफी नामे बेचते थे ना, इनके कहने के मुताबिक कि जन्नत के प्लॉट भी बेचते थे और फिर कॉर्नर प्लॉट की कीमत ज्यादा वसूल करते थे। हंसने की बात नहीं है तो सब रोने की बातें हैं। इसी तरह मुझे फ्रांस में एक चर्च में जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत बड़ा चर्च था और उसके अंदर मुख्तलिफ जगह बनी हुई थी, एक जगह कैंडल्स भी रोशन हो रही थी, मालूम नहीं चूंकि जबान नहीं समझ आती थी उनकी, तो मैंने कुछ सवाल किए भी तो थोड़ा गुस्से में भी आया कि क्यों पूछ रही है, लेकिन एक अंग्रेजी उनकी इतनी अच्छी नहीं और मुझे फ्रेंच नहीं आती थी, कोई बीच में ट्रांसलेटर नहीं था कि मैं उनसे जरा मजीद मालूम कर सकती। फिर एक जगह पर हम गए तो केबन बने हुए थे छोटे छोटे और उसमें शीशा लगा हुआ था और प्रीस्ट बैठे हुए थे और 7 लोग थे कुछ, तो मैंने समझा शायद काउंसलिंग के लिए आए हैं, तो पता चला कि नहीं ये काउंसलिंग नहीं है, ये बेसिकली अपने गुनाहों का इनके सामने इकरार करने के लिए आए हैं और फिर ये कुछ पैसे देंगे और इस तरह इनको पादरी जो है वो एक तरह से लाइसेंस देगा या सर्टिफिकेट देगा कि अब तुम्हारा गुनाह जो है वो माफ हो गया। कन्फेशन बॉक्सेस भी होते हैं। ये नजरिया कहाँ से आया कि कोई इंसान बख्शवा देगा या बख्श देगा, ये हकीकी दीन के अंदर तो नहीं है। अल्लाह के बारे में आता वो गफूर रहीम है और वो तौबा से पिछले गुनाह माफ कर देता है। ये जो अभी मैं बात कर रही थी ना कि ये जो एक खुद साख्ता दीन हमने बना रखा है, अगर निजात हमारी लोगों के हाथ में है तो लोगों की गुलामी हो गई, फिर अल्लाह के साथ ताल्लुक कौन रखेगा, फिर अपनी इबादत खुद से कोई क्या करेगा। फिर इन्हीं लोगों की खिदमत करके जन्नत मिल जाएगी। ये सारी एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह है? इस किताब को पता नहीं है ये क्या कहती। ये जो यसुद्दू नाम सभी लिखना है, इस पर थोड़ी सी बात।
हमने जब इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजियस बिलीफ सिस्टम एग्जिस्टिंग है इन द वर्ल्ड राइट नाउ वो क्या है, एथियस्ट एग्नोस्टिक नॉन रिलीजियस सेक्ट। ठीक है, दिस इज आफ्टर क्रिश्चियनिटी इस्लाम हिंदुइज्म के बाद चौथा ये है। तो ये जो इनका उलेमाए यहूद और नसारा का जो ये तरीका था, ये मनी मेकिंग का जो सारा बिजनेस और इंडस्ट्री थी, ये कोई नई चीज नहीं है। लाइक यू आर रीडिंग द कुरान, ये तो हिस्टोरिकली चला आ रहा है। तो एज अ रिएक्शन टू दिस इसने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया लोगों को दीन से मुतनफर करने के लिए। इसलिए क्योंकि स्पेशली जो ईसाई है वो चर्च में एक दफा भी मेरे ख्याल से विजिट नहीं कर सकते थे कि इससे पहले कि वो जो है आर्म्स कहते हैं ALMS आर्म्स जो है वो चैरिटी डोनेशन होता था जो चर्च को देना जरूरी होता था। चाहे आप किसी भी काम के लिए जाएं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैड टू ड्रॉप मनी इन द बॉक्स एंड यू हैड टू पुट कॉइन्स प्रीस्ट के हाथों में। आप देखेंगे हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे कि इस चीज से बहुत ज्यादा रिएक्शन हुआ लोगों में और बहुत ज्यादा दीन से ये दूर हुए इस चीज की वजह से कि चर्च जो है उनको आम आदमी को इस तरह लगता था कि ये तो बिल्कुल मनी मेकिंग इंडस्ट्री बन गई है और ये बिजनेस है। और इसी तरह जो पोप था उसने हमने पढ़ा था कि किंग का स्टेटस था पोप का एंड ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये सारी चीजें जो है ये इतनी इलॉजिकल और इतनी सेल्फिश किस्म की जो पॉलिसीज थी चर्च की, तो इसने इवेंचुअली मासेस में बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी के लिए एक नफरत और एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करी और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बहुत सारे जो है वो क्रिश्चियंस टर्न्ड अवे फ्रॉम रिलीजन। और आज भी आप देखेंगे कि उनकी चर्च गोइंग पॉपुलेशन बहुत बहुत कम है और इसीलिए जो है ये नॉन रिलीजियस सेक्ट जो है ये इतना ज्यादा वेस्ट में बढ़ गया है। आप देखेंगे कि ये चाइना वगैरह में इतना नहीं है इस तरह से। इवन हिंदूज में यू विल फाइंड मोस्ट पीपल आर समवॉट फॉलोइंग देयर रिलीजन बट द क्रिश्चियंस एंड जूस स्पेशली यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ही अपने दीन से टर्न अवे कर चुके हैं इस चीज की वजह से।
फिर कसूर तो हम जैसों का है ना, जो पहुंचते नहीं और बताते नहीं, वही ना बिदत से सुन्नत चली जाती। तो इसी तरह शिर्क का नुकसान क्या होता है कि अल्लाह ताला के हुकूक मारे जाते हैं। ये किसी ने लिखा है कि हम एक कमर्शियल एरिया में रहते हैं। मेरा भाई बता रहा था कि एरिया के तमाम दुकानदारों ने महीने की उजरत पर खारी सब लगाए हुए हैं जो रोज सुबह आकर चंद मिनट कुरान पाक की तिलावत करते हैं बरकत के लिए। तो क्या हमें उनको सही बात बताकर रोक देना चाहिए? अब बात यह है कि इन तरीकों का नुकसान क्या हुआ है, यानी किराए पर किसी कारी साहब को लगाकर दुकानों पर कुछ पढ़वा लेना, इसका नुकसान क्या है? खुद नहीं पढ़ते। अलबिदा तो तुम ही तो सुनना, बिदत आती तो सुन्नत चली जाती। ये एक नहीं दो मुख्तलिफ लोगों ने लिखकर दिया था, तो एक तो मैंने फेंक दिया और एक आपको पढ़कर सुनाया है, किसी और जगह पर भी ऐसा है। इट मीन्स के इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस। जब कारी साहब पढ़ते तो वो सुनते भी नहीं, वो तो अपने और काम लग रहे थे। घरों में भी जब पढ़वाने के लिए बुलाते हैं तो घर वाले तो शरीक नहीं होते। आपको पता है कि हमारे मुसलमानों में अपने दीन पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं, इसकी क्या वजह? हम क्यों शर्मिंदा शर्मिंदा रहते हैं दीन पर पढ़ के या दीन पर चल के? हमें डर क्यों लगता है दीन पर चलने से? हम क्यों शर्माते झीमते रहते हैं अपने ही दोस्तों अपने रिश्तेदारों से अपने ही मुसलमान माशरे से? इसकी क्या वजह है? कॉन्फिडेंस नहीं, क्यों नहीं, उसकी क्या वजह है? इल्म नहीं है, पता ही नहीं है कि दीन है क्या चीज। अगर पता भी हो तो यकीन की हद तक उसका इल्म नहीं है ना, यानी यकीन और एतमाद नहीं है अल्लाह और उसके रसूल पर कि वो सच और हकीकी की बात हमें बताते हैं। और जिन लोगों को हम आइडियलाइज करते हैं वो लोग इस तरफ नहीं आते, तो फिर हमें एक कॉम्प्लेक्स होने लगता है कि जिन लोगों से हम मुतासर हैं जिनको हम बड़ा समझते वो तो इस तरफ है नहीं, तो फिर हम हो गए तो हमारी कोई सही नहीं होगी। तो आप लोगों के लिए नमूना बन जाए ना, आप आइडियल बन जाए कि लोग आपसे मुतासर हुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्यारुकुम फिल जाहिलियत ख्यारुकुम फिल इस्लाम। जो लोग जाहिलियत में बेहतरीन थे लोग उनको आइडियलाइज करते थे, इस्लाम को अगर पूरी तरह अख्तियार कर ले तो लोग इस्लाम में भी उनको आइडियलाइज करेंगे। तो आप क्यों नहीं ऐसे नमूने और मिसालें पेश करते कि जिसकी वजह से लोगों का कॉम्प्लेक्स दूर हो जाए। अंदर का डर है, अंदर का खौफ निकालने की जरूरत है। अंदर का डर उसी वक्त निकलेगा जब ईमान आएगा, वो इसी डर से तो बचाया जाए। तक शौन हम वलम यख्शा इल्लल्लाह। एक और बात यह है कि हम आपस में भी एक दूसरे को बतवासो बिलहक बतवासो बिस्तबर नहीं करते, बल्कि उल्टा हम खुद ही एक दूसरे को मजाक के अंदाज में काम करने से रोकते हैं। कभी हमें ये नहीं पता चलता कि हम भी ये सुद्दू नाम सभी लल्ला कर रहे हैं। अगर एक शख्स किसी नए काम को अपनाने की कोशिश में लगा हुआ तो हम उसका मजाक उड़ाने लगेंगे।